ओम शांति। ज्ञान सरोवर में आप सब विशेष योग तपस्या के लिए आए हैं और जब इस स्थान पर हम आते हैं जहां बैठे हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा पांडवों की गुफाएं। ये स्थान देखते ही ऐसे लगता है जैसे पांडव की गुफा है। कोई भी प्रकार की हलचल आवाज उससे परे एकदम एकांत का अच्छा अनुभव इस स्थान पर आते ही होने लगता है। आप सबने भट्टी का चांस लिया, चारों तरफ की हलचल के वातावरण के बीच में ऐसा एकांत, ऐसी सुंदर स्थिति बनाने का अवसर जो आप सबको मिला है, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, समझते हो ना। और वो भी ऐसे पवित्र सरोवर में, ज्ञान सरोवर में, जहां पर किसी भी प्रकार की बाहरी दुनिया की हलचल नहीं है। बाबा के इस स्थान पर आते ही योग के गहरे अनुभव होने लगते हैं और बाबा अपने बच्चों को इस समय ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं कि आने वाला समय जो अनेक परिस्थितियों से घिरा हुआ है, कलयुग का अंत ऐसा सहज नहीं है, इतने बड़े विश्व का परिवर्तन, उस परिवर्तन के लिए निमित्त आत्माएं जिनको बाबा ने चुना है, कलयुग का तमोगुण का परिवर्तन हो, सतोगुण सतयुग की स्थापना हो, उसके लिए हम सब योग ज्वाला, विशेष शक्तिशाली योग का अभ्यास करते हैं जिसको ज्वालामुखी योग भी कहा है, पावरफुल योग भी कहेंगे, लाइट माइट संपन्न स्थिति जिसमें किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। योग का आधार तो एक ही है, हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस देह और देह की दुनिया से किनारा करके अपने भ्रकुटी आसन पर बैठे। जब भी योग अभ्यास आप करते हो, मले कमेंट्री कराने वाले कराते हैं, लेकिन बुद्धि में यही रहता है कि मैं आत्मा, इस शरीर से अलग हूं, अपने स्वस्वरूप की स्मृति रहे, स्वस्वरूप का चिंतन हो, स्वदेश और स्वधर्म की स्मृति रहे, अपने शांत स्वधर्म में जब हम स्थित होते हैं तो जितने बाह्य संकल्प हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। योग को ज्वाला क्यों कहा है, जबकि योग आत्मा को शीतल बनाने वाला है। ज्वाला तो जला देती है, फिर भी योग को ज्वालामुखी योग, ज्वाला स्वरूप याद क्यों कहा है, सोचा है कभी क्यों कहते हैं ऐसे? जी विकर्म विनाश होते इसलिए। और लवलीन रहते हैं। ज्वाला शब्द ही एक बहुत तेज आग का प्रतीक है, कहते ज्वाला जल रही है। छोटी आग को ज्वाला नहीं कहते हैं, जब बहुत तेज अग्नि होती है उस तेज आग को ज्वाला कहते हैं। और जब भी उस ज्वाला के बीच में, उस अग्नि तेज आग के बीच में कोई भी चीज डाल दी जाती है तो उसका रूप बदल परिवर्तन हो जाता है। अच्छा जेवर बनाने के लिए सोनार एक छोटी सी भट्टी जलाते हैं। शायद आप लोगों ने देखा हो, सोनार की जो भट्टी होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन उस भट्टी की ज्वाला इतनी तेज होती है जिसमें वो सोना जब डालता है तो सोना पिघल जाता, पानी जैसा हो जाता है। और उसमें जो भी मिक्स चीजें होती हैं वो सब अलग हो जाती हैं, प्योर सोना अलग करके फिर उसमें जितनी मिलावट करनी हो करके अच्छा जेवर बना देता है। लेकिन जब तक वो सोना पिघलता नहीं है, जब तक उसकी आलाय नहीं निकलती, खाद नहीं निकलती, तब तक अच्छा जेवर नहीं तैयार हो सकता। तो बाबा आत्मा को इतना प्योर, इतना शुद्ध बनाना चाहते हैं जिससे जो जेवर बने, अर्थात हमारी जो सतयुगी दुनिया की जीवन हो उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो, कोई विकार, कोई बुराइयां, देह मान का अंश, वो सब समाने ये भट्टी, नाम ही भट्टी दिया है, जिसके अंदर हम लगन की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। लगन को भी आग कहते हैं, कहते हैं इसको लगन की अग्नि लग गई है। लगन माना प्यार, जिगरी प्यार। लौकिक में भी जब कहीं किसी से थोड़ा भी प्यार हो जाता है तो उस प्यार के पीछे इंसान पागल बन जाता है, भागता है, जीवन भी खत्म कर देता है। ये प्यार जो परमात्मा से आत्मा का होता है, इस प्यार में आत्मा इतना समा जाती है जो सब दुनिया की शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, और एकाग्र जो हलचल समाप्त हो जाती है। इसलिए ज्वालामुखी योग, ज्वाला स्वरूप योग के लिए मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती, और एकाग्रता के लिए बहुत अंदर की रुचि, अंदर की लगन चाहिए। कोई भी चीज इन्वेंशन करने के लिए, इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट ने कोई खोज की, कोई नई चीज निकाली, जितना ही विज्ञान ने इन्वेंशन की है उसके पीछे वो एकांत में एकदम अलग चले जाते हैं और उस लक्ष्य को सामने रख करके फिर उस पर रिसर्च करते हैं, ध्यान देते हैं। एकाग्रता कोई शून्यता नहीं है, जड़ नहीं है। ऐसे नहीं समझो हम एकाग्र हो गए माना हमारे संकल्प शांत हो गए, हलचल समाप्त हो गई, लेकिन जिस लक्ष्य की ओर हम बैठते हैं उस लक्ष्य के सिवाय दूसरा कोई संकल्प ना आए, उसको एकाग्रता कहते हैं। जिस अनुभूति को हम करना चाहते हैं, प्रभु मिलन का आनंद लेना चाहते हैं, तो मैं जो हूं जैसा हूं और बाबा जो है जैसा है, ये सब फोन बंद करो, अपने अपने पहले मोबाइल बंद करो, सब स्विच ऑन ऑफ करो, ना आता हो तो आजू बाजू में बता करके ऑफ कर दो, नहीं तो हलचल में एक सबका ध्यान उधर चला जाता है। ऐसे मन और बुद्धि की एकाग्रता जिसमें व्यर्थ को हम स्टॉप कर दें, कोई भी व्यर्थ संकल्प, इधर उधर का संकल्प, साधारण संकल्प भी उत्पन्न न हो। साधारण संकल्प समझते हो किसको कहते हैं? साधारण संकल्प जो रेगुलर हमारे चलते रहते हैं, भोजन के हैं, स्नान के हैं, नींद के हैं, कर्म के हैं, जो हमारी रेगुलर ड्यूटी है उसके हैं, वो सब संकल्प तो नेचुरल चलते हैं। उन संकल्पों को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, समय आता है उसके संकल्प आ जाते हैं और वो हम कर लेते हैं। लेकिन ये संकल्प जिसके अंदर प्रभु मिलन का सुख है, आनंद है, एक की लगन में मगन हो जाए, इसको शास्त्रों में भगवान के साथ डांस करती हैं, खेल पाल करती हैं, छेड़खानी करती हैं, सब बातें भूल जाती हैं, बस भगवान के प्यार में मगन हो जाती है, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ, जिसमें इंद्रिय सुख भूल जाता है। लेकिन एक है परमानंद की अनुभूति, बाबा के प्यार में इतना समा जाए आत्मा, जो सच्चे आनंद का अनुभव हो, आनंद की भेंट में कोई दुख और सुख नहीं आता, परमानंद। उस आनंद की स्थिति में जब आत्मा खो जाती है, समा जाती है, बहुत प्योर बन जाती है, शुद्ध बन जाती है, जितनी उसकी मैल है वो समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ी मैल कौन सी है? देह अभिमान की। जब आत्मा अपने स्वरूप को भूली, देह अभिमान में आई, तो देह अभिमान के कारण अनेक बुराइयां, अनेक विकार उत्पन्न हो गए, एक के बाद एक। देह अभिमान के कारण कोई भी कर्म हमने इन कर्म इंद्रियों से किए, वो कर्म बंधन बने, और कर्म बंधन बनते बनते वो संस्कार बन गए, और इतने कड़े संस्कार बन गए, जो संस्कारों के अनुसार संकल्प चलने लगे, और संकल्प चले, वही बोल और वही कर्म हो गए। फिर कर्म बार बार करते करते पक्के संस्कार बनते गए। संस्कारों को समाप्त करना, संस्कारों को परिवर्तन करना, जिससे फिर से संकल्प उत्पन्न ही न हो, न कोई विकारी संकल्प आए, न कोई पास्ट के ऐसे संकल्प इमर्ज हो, स्वप्न भी ना आए, इतनी आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाए, उसके लिए बहुत शक्तिशाली याद चाहिए, जिसके लिए हम सबको बाबा कहता है बच्चे ऐसी तपस्या करो, ऐसी भट्टी करो, एकदम एकांत में चले जाओ। एकांत माना एक के अंत में चले जाओ। एकांत ऐसा नहीं है कि इस परिवार को छोड़ करके, अपने कार्य व्यवहार को छोड़ करके जंगल में चले जाओ, उसको एकांत नहीं कहते हैं। वहां भी अगर संकल्प चल रहे हैं, जब कभी कहते हैं ना सोशल डिस्टेंस रखो, दूर दूर रहो, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठो, तो मैं अपना चिंतन जो करता हूं कि ये दैहिक सोशल डिस्टेंस तो ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन अंदर जो संकल्पों की भीड़ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसमें डिस्टेंस कब आएगा? जब तक उसमें डिस्टेंस नहीं आएगा, तब तक रोग समाप्त नहीं होंगे। इस रोग से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस रखो, दूर दूर रहो, लेकिन जो आत्मा के ऊपर रोग पर रोग आते जा रहे हैं, संकल्पों में इतनी सारी नेगेटिविटी आ गई है, मन में इतनी बीमारियां आ गई हैं, उस रोग से भी निरोगी बनने के लिए मन को इन विचारों से बहुत डिस्टेंस रखना पड़ेगा, दूरी बनाओ। जो संकल्प मेरे काम के नहीं है, चेक करो, जरूरी नहीं है हर बात में संकल्प चलाना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे किसने किया, क्यों कर रहा है, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, इन प्रश्नों में अगर चले गए तो क्या होगा? एक मकड़ी की जाल है, मकड़ी की जाल देखिए, हमारे घर में तो मकड़ी की जाल मिलती नहीं है कहीं, सफाई इतनी रहती है, लेकिन कई स्थानों पर आप जाएंगे तो जाला मकड़ी ने बनाया होता है, और अपने ही लार से, अपने ही थूक से वो जाला बना करके बहुत सुंदर बनाती है, डिजाइन वाला बनाती है, उसमें घूमती है, मस्ती करती है, फिर उसके बाद उसके अंदर फंस जाती है, और फंसने के बाद वहीं प्राण छोड़ देती है। कुछ एक ऐसी होती मकड़ी जो बुना हुआ जाला धीरे धीरे बैठ करके कोने में फिर से खा लेती है, हपका लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने अनेक संकल्प विकल्प चला करके अनेक कर्म बंधनों का बहुत सुंदर मकड़ी का जाला बना लिया है। हर आत्मा उस जाले के अंदर घूम रही है, इसी में सुख समझ रही है, लेकिन वो एक दिन घूमते घूमते उसी के बीच में प्राण छोड़ देती है। इसलिए हम सबको समझ दी बाबा ने, ये जो देह है, संबंध है, पदार्थ है, संस्कार है, ये जो एक मकड़ी का जाल बहुत अच्छा बन गया है, इसको समेट लो, इसको संभालो। कोई भी संकल्प जो मेरे काम के नहीं है, स्टॉप, रुको, मुझे नहीं सोचना है, मेरा काम नहीं है इससे। जो बोल मुझे नहीं बोलने हैं, जिससे कोई भी मतलब नहीं निकलता है, ऐसे बोल पर हमारा कंट्रोल रहे। न ऐसे संकल्प करो, न ऐसे बोल बोलो, और कर्म तो कर्म बंधन बना लेते हैं, इसलिए कर्मों पर भी बहुत ध्यान चाहिए। कोई भी कर्म बंधन न बने उसकी युक्ति क्या है? क्या युक्ति है? कर्म करो लेकिन कर्म समर्पित कर दो। कराने वाला बाबा, मुझ आत्मा को निमित्त बना करके कर्म कराया, मेरा भाग्य बन गया, लेकिन मैंने किया है, इस मैंपन को समर्पित कर दो। कराने वाले ने करा लिया। जरा भी कर्तापन का भान अगर आ गया तो वो कर्म बंधन बन जाएगा, फिर अपनी तरफ वो खींचेगा, योग नहीं लगेगा। जब इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया, समझ दी है, कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना हमें नहीं रहना है, कर्म तो करना ही है, और जब कर्म करना है तो संकल्प भी चलेंगे, बोल भी होंगे, लेकिन कोई भी संकल्प विकल्प न बने, बोल कोई को दुख न पहुंचाए और कर्म बंधन न बने, उसके लिए कराने वाली मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूं, मैं अलग हूं, ये अलग है। आप सब अभ्यास करके देखना, एक बाबा करावनहार मुझ आत्मा को निमित्त बना करके कोई भी कर्म करा रहा है। मेरे लौकिक कर्म है, मेरी लौकिक जवाबदारियां हैं, मेरे ये हैं, बाबा कहता बच्चे संगम युग पर आप सब मरजीवा हो, उस दुनिया से मर गए। भले प्रवृत्ति बाबा ने नहीं छुड़ाई, गृहस्थ व्यवहार में रखा, लेकिन वो कर्म बंधनी संबंध नहीं है, वो सेवा के लिए संबंध है। संबंध में जरूर आना है, लेकिन संबंधों में आते हुए सेवा का संबंध है, कर्म बंधन के कारण ये संबंध नहीं है। बाबा ने कहा है बच्चे निभाओ, एक बहुत अच्छा शब्द है तोड़ निभाओ, तोड़ निभाओ, माना पहले बुद्धि से तोड़ दो फिर निभा दो। इसलिए संबंध निभाना है, लेकिन तोड़ निभाना है, कहीं फंसना नहीं। इतना समय से हम सब फंसते आए बंधनों में, मेरा 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 कह करके एक जाल बना लिया, अनेक संबंधों में, अनेक संस्कारों में फंस गए। अब संगम युग पर बाबा अपने समान बना करके हम सबको उड़ाना चाहता है। चलो बच्चे अभी समय आ गया, 84 जन्मों में तुमने बहुत कर्म बंधन बनाए, बहुत हिसाब किताब बनाए, इस थोड़े समय में आत्मा को संपूर्ण पावन बना करके, स्वच्छ बना करके, निर्बंधन बना करके तुम्हें मेरे पास आना है। चेक करना चाहिए कौन से अभी तक भी आत्मा पर सूक्ष्म दाग हैं। आप सब जानते हो कि हीरे का दाग ऐसे निकाला नहीं जा सकता। जो हीरा कट करते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, सूरत के अंदर हीरा का बहुत सारा बिजनेस चलता है, और हीरे को वहां पर घिसने वाले छोटे छोटे बच्चे ही हैं। उड़ीसा साइड के मैंने देखा बहुत सारे हीरा घिसने वाले हैं। एक बार मुझे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर ले गए हीरे की, कहते आपको पता है हीरे का दाग कैसे निकाला जाता है? मुझे नहीं मालूम। बोला हीरे का दाग निकाल नहीं सकते हैं, हीरे को कट करना पड़ता है। जितना बेदाग है उतना अलग करते हैं, लेकिन उस बेदाग हीरे की बहुत बड़ी कीमत होती है। इतने छोटे छोटे जो शायद माताएं अपने नाक पर इधर पहनती हैं, गले में पहनती हैं, एक एक हीरे की कीमत 3 करोड़ 4 करोड़, इतना छोटा सा प्योर हीरा जो है। पहले बाबा जब जवाहरी थे तो क्या करते थे मालूम है? बाबा के पास एक मैग्नीफाई ग्लास था, पांडव भवन में जाएंगे ना, वहां बाबा के हिस्ट्री हाल में अभी भी रखा है वो मैग्नीफाई ग्लास, बाबा के हाथ में था। और उस मैग्नीफाई ग्लास के आगे जब हीरे को रखते थे ना, तो बड़ा रूप दिखाई देता था, और उसमें कहीं भी दाग होता था पता चलता था। आजकल के जमाने में ऐसे कांच नहीं होते, मैग्नीफाई ग्लास नहीं होते, कंप्यूटर है। तो उस भाई ने एक छोटा सा हीरा उठाया और कंप्यूटर के आगे ऐसे रखा, और स्क्रीन के ऊपर इतना बड़ा हीरा दिखाई देने लगा। फिर कहता देखो इसकी वैल्यू कहां से कम होती है हम लोगों को पता चलता है, और जहां पर भी छोटा सा भी दाग होता है उसको हम घिस करके अलग करके उसको निकाल देते हैं। भले हीरा छोटा हो जाएगा लेकिन दाग निकल जाएगा, फिर उसकी कीमत बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि आपको पता है बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है आत्मा बहुत छोटा हीरा है, इन आंखों से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है, अगर वो प्योर है तो। अगर मिक्स है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बाबा अपने बच्चों को एकदम अमूल्य हीरा बनाने के लिए आया है, बिल्कुल स्वच्छ पवित्र शुद्ध हीरा, इसके अंदर किसी भी प्रकार का दाग न रहे। दाग क्या लगा इस पर? देह अभिमान के कारण, बड़े विकारों को जीत भी लिया, उसके बाल बच्चे बहुत हैं, लगाओ झुकाओ प्रभाव मेरा तेरा, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा, कितने सारे दाग कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, और इतना अलबेले होकर के हम चल रहे हैं जो कभी देखते नहीं कि ये दाग है मेरे ऊपर। लोगों को उससे दुख पहुंच रहा है, लोग उससे परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर वो दाग है वो दूसरे को कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, उसको महसूस ही नहीं होता इतना सूक्ष्म दाग। लेकिन जब योग में बैठता है तब उसको पता चलता है, योग लगता नहीं है, पढ़ाई में रस नहीं आता। मुरली के अंदर बैठेगा तो भी नींद आएगी, योग में बैठेगा तो 2 मिनट में ही सो जाएगा, या बुद्धि भटकेगी, इधर से उधर भटकेगी। जरूर कोई बोझ है या दाग है, कहीं तो कर्म बंधन खींच रहा है आत्मा को, नहीं तो बाबा भगवान जिससे हम मिलन मना रहे हैं, बैठ जाओ ऐसे, बाबा कहो और बाबा में खो जाओ समा जाओ। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसको पुकार रही है, वो बाबा मेरा बाबा है, और उसने मुझे चुना है, ढूंढा है, अपना बच्चा बनाया है, अपनी गोद का पुत्र बनाया, अपना सब खजाना मुझे आत्मा को दे रहा है। कितने भाग्यवान हैं अगर थोड़ा सा अपने आप को उस खुशी और नशे में ले आए, उस उमंग उत्साह में आकर के बाबा को प्यार से देखे, वो लगन जो है लग जाएगी और योग एकाग्रता के आधार से ज्वालामुखी बन जाएगा। जब तक प्यार को इमर्ज नहीं करोगे तब तक योग की यथार्थ जो जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारी शक्तिशाली याद हो, याद से केवल हमारे संस्कार चेंज नहीं हो रहे हैं, बहुत बड़े विश्व का कल्याण हो रहा है। जितना आत्मा एकाग्र चित्त होकर के बैठती है, एक बाबा के प्यार में खो जाती है, खुद भी पावन बनती जाती है, लेकिन उसके जो वाइब्रेशंस हैं, उसके जो तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे इस नेगेटिव वातावरण को परिवर्तन करती हैं। अपने आप ही सेवा होती है ऑटोमेटिक। अगर आज 100 लोग एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होकर के बैठ जाएं कि मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध हीरा हूं, एक बहुत पवित्र आत्मा हूं, उस समान में स्थित होकर के बैठ जाओ, एकाग्र चित्त हो जाओ, इसका जो ओरा बनेगा, इसके जो तरंगे चारों तरफ फैलेंगी, वो शांत आत्माओं को शांति दे देंगी, प्रकृति के तमोगुण को समाप्त कर देंगी, नेगेटिव वातावरण खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है योग ज्वालामुखी चाहिए। ज्वाला जहां जल जाती है उसकी तरंगे, उसकी गर्मी, उसकी सकास बहुत दूर दूर तक भी, एक तरफ लाइट जाती है दूसरी तरफ शक्ति जाती है, परिवर्तन करती है, स्थान में परिवर्तन आ जाता है, वहां के जो छोटे छोटे ऐसे विषाणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब देखो सूर्य की तेज किरणें जिस स्थान पर पड़ती हैं वहां का कीचड़ा समाप्त कर देती हैं, गंदगी समाप्त कर देती है। तेज किरणें सागर के ऊपर पड़ती हैं, उसका खारापन तेज समाप्त हो जाता है, पानी उठता है भाप बन करके और हम सबको मीठा पानी मिलता है। तेज किरणों की जरूरत है। तो इसलिए बाबा ने इस योग को नाम दिया ज्वालामुखी योग। बहुत शक्तिशाली याद जिसमें केवल आप और बाप, मैं और मेरा बाबा, इसके सिवा और कोई संकल्प नहीं, अनुभव के संकल्प हैं। आत्मा बहुत मगन होकर के बाबा को देख रही है, बाबा के स्वरूप का चिंतन कर रही है, उनकी शक्तियों का अनुभव कर रही है, उसी स्वरूप में स्थित होकर के बैठी है। वो याद अगर 15 मिनट 20 मिनट भी इतनी एकाग्र चित्त होकर के करो आप, देखो आपके संस्कार। एक दिन बाबा मुरली में कह रहे थे 5-7 दिन पहले, अगर 1 घंटा भी कोई बच्चा शरीरी स्थिति में बैठ जाए तो उसके विकर्म विनाश हो जाएंगे। सुना होगा 1 घंटा भी, हम तो 8-8 घंटे की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या सच्ची अगर है तो विकर्म विनाश होते हैं, नहीं तो 15 साल 20 साल 25 साल चलने वाली आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं लेकिन संस्कार चेंज नहीं होते, वही संस्कार बार बार उछलते हैं, वही जो 20 साल पहले गुस्सा था अभी तक भी चल रहा है, वही जो काम विकार की उत्तेजनाएं थी अभी तक भी शांत नहीं हुई हैं, वही वृत्तियां चंचल हैं। पढ़ रहे हैं रोज, मुरली सुन रहे हैं रोज, बाबा कह रहा है क्रोध नहीं करना, काम महाशत्रु है, क्रोध अग्नि है, कितनी सारी शिक्षाएं बाबा हम बच्चों को देता है, लेकिन सुनते हैं ठीक है, उस समय ठीक रहता है, थोड़ा 1-2 घंटा उसका प्रभाव रहता है, फिर कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, फिर वो कोई कारण बनता है और विकार उत्पन्न हो जाता। कारण क्या है? बीज को जलाया नहीं है। आज कोई भी बीज है अगर आप ऐसे ही छिपा करके कहीं मटके में कहीं चीज में रख करके रख दो और कोई ये बीज उगेगा ही नहीं, अभी हो सकता है 1-2-3 साल रख दो, सड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर बीज अच्छा है फिर से वायुमंडल में आएगा, पानी हवा धूप मिट्टी मिलेगी, फिर से अंकुरित हो जाएगा। अगर ये बीज आत्मा जो बीज है उसके अंदर संस्कार नहीं गल रहे हैं, नहीं परिवर्तन हो रहे हैं, माना हमने इसको ज्वालामुखी याद से भुना नहीं है, जलाया नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा संग कर रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, वो संस्कार दबा हुआ है, और दबा हुआ संस्कार कभी भी संग ऐसा मिलेगा, वातावरण ऐसा मिलेगा। आज 8 महीने से आपको क्लास का संग नहीं मिला, बहनों का संग नहीं मिला, कई आत्माएं पक्की भी हुई हैं जो पक्की होने वाली थी और कई एकदम अलबेली हो गई, दोनों तरह का रिजल्ट है। जिनकी लगन अच्छी थी, जिनका निश्चय पक्का था, वो तो और अच्छी तरह से लाभ लिया इसका एकांत का, और कई देखो तो एकदम घरों में रह करके वही अलबेलापन आ गया, उन विकारों ने फिर से उत्पत्ति हो गई, इंटरेस्ट खत्म हो गया, अच्छे संग से अच्छे वातावरण से पढ़ाई से, ब्रह्मा भोजन से, बहनों के स्नेह भरे रूहानी प्यार से आत्मा पावन बनती है, ऐसा नहीं बन रही है। लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो वो संस्कार जो छिपा हुआ है बाहर आने लगता है। कारण यही है कि हमने कभी एकांत में बैठ करके खुद को देखा नहीं है, मैग्नीफाई ग्लास से चेक नहीं किया कि काम विकार कहां सभी तक भी मेरे अंदर है। उत्तेजनाएं आती हैं, आवेश आते हैं, आवेग में आते हैं, कर्म इंद्रियां चंचल हैं, दृष्टिवृत्ति अभी तक भी जाती है, ये अच्छा है, ये अच्छी है। चाहे खाने पीने की चीजें आत्मा को आकर्षित करती हैं, चाहे रूप रंग का आकर्षित करता है, या कोई हमारे मतलब की हमारे पसंद की बात नहीं होती, जोश आता है, गुस्सा आता है, वैसे कहेंगे हमारे को कोई में किसी में मोह नहीं है। लेकिन जब कोई अचानक कोई ऐसी बात आ जाती, पता नहीं मरे हुए संबंधी भी जाग जाते, दुख शुरू होता है, उनकी आकर्षण शुरू हो जाती है, कोई न कोई सूक्ष्म विकार। जब तक आत्मा उसको महसूस नहीं करेगी और उसके लिए पावरफुल तपस्या नहीं करेगी, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। आप सब इस भूमि पर आए हो एकांत में बैठ करके अपने आप को देखना। पता मेरी दादी क्या करती थी, लास्ट समय में कर्मातीत जब बनने की भी समय आया, प्रैक्टिकल के एक दिन बाद सुनाता हूं मैं, दादी कहा एकदम एकांत में चली गई, सब थी सबके बीच में, न मुरली सुनाना, न किसी से बोलना, न मिलना जुलना, एकदम आंख बंद कर लिया। एक दिन मैं गया दादी के क्वार्टर में, सोफे पर एक कोने में ऐसे बैठी थी आंख बंद करके। मैंने कहा थोड़ा तो क्या कर रही दादी, नींद में नहीं थी, लेकिन एकदम ऐसे कोई मगन हो जाता ना ऐसे खोया हुआ, तो मैं बाजू में बैठ गया जाकर के सोफे पर ही। पूछूं तो दादी क्या करती है, मेरा तो बहुत कारोबार था, संबंध था दादी से, तो जब बहुत देर तक मैं ऐसे देखता रहा दादी को, दादी ने आंख नहीं खोली, तो मैंने ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे हिलाया थोड़ा, दादी, तो दादी ने ऐसे मुझे देखा, बोलो क्या है, कुछ काम है, हलचल में नहीं आई, बस इतना ही पूछा बहुत धीरे से, दादी आप क्या कर रही थी, कहां थी आप, सुनाऊं क्या थी, बहुत मुस्कुरा के बोले सुनाऊं, ने कहा दादी कहती है आज मैं बाबा के पास अपने हीरे को लेकर के गई, आत्मा रूपी हीरे को ऐसे लेके गई, और ऐसे हथेली पर रख करके मैं चारों तरफ हीरे को देख रही थी, इसमें कोई दाग तो नहीं है, और चारों तरफ बहुत देर तक देखती रही, कोई दाग मुझे दिखाई नहीं दिया, तो बाबा सामने इमर्ज हुए और आए, कहते बच्ची क्या देख रही हो, इस हीरे में कोई दाग नहीं है, ये बेदाग हीरा है। ऐसे बाबा से रूह रिहान कर रहे थे। आप लोगों के पास समय मिलता है कि नहीं, ऐसे हीरे को देखने का समय है किसी को, बैठते हो ऐसे कभी, बैठ जाओ ऐसे एकदम, चले जाओ अंतर्मुक्ता की गुफा में, कुछ समय 15 मिनट 20 मिनट जितना एकाग्र होकर के बैठ सकते हो। काम तो सही जिंदगी करते हैं, वो तो होते रहेंगे, ये सेवा, ये करना, लेकिन कुछ समय बैठ जाओ ऐसे, देह से अलग होकर के अपने हीरे को सामने ले आओ, आत्मा को, और अपने ही बुद्धि के नेत्र से उसको देखो, निहारो, कहीं ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा, ये चाहिए, ये संबंध, ये मेरा वो तेरा, कहीं भी बुद्धि जाती तो नहीं, किधर जाती है, क्या चाहिए मुझे, महसूस करो। और जब उस हीरे पर कोई भी दाग ऐसा लगे कि अभी तक ये है, बाबा की शक्तिशाली किरणें जैसे लेजर किरणें डालते हैं ना, आजकल ऑपरेशन करने वाले कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो चीर फाड़ नहीं करते, कटपिट नहीं करते शरीर को, लेकिन लेजर किरणें फोकस से ऐसे डालते हैं और उस लेजर किरणों से पथरी जैसी चीज को भी तोड़ देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। विज्ञान है, साइंस है, लेकिन आध्यात्मिक साइंस है कि बाबा की बहुत पावरफुल वो करंट वाली किरणें अंदर जाएं और कोई भी ऐसे आत्मा में संस्कार हो, स्वभाव हो, आदतें हो, उसको समाप्त करें, फिर से वो इमर्ज ना हो। जो आज संकल्प कर ले वो फिर से दोबारा इमर्ज ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा ही तपस्या है। दृढ़ता संपन्न संकल्प ही तपस्या कहलाता है। संकल्पों में इतनी दृढ़ता हो, कुछ भी हो जाए, जैसे कोई जिद्दी पुरुष होता है ना, कहते बड़ा जिद्दी है, इसने संकल्प कर लिया ये नहीं खाऊंगा, यहां नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए ना, जाता है ना, बात करता है ना, देखता है उधर, वो जिद्द तो आसुरी संस्कार है। हमें बाबा ने उसके संस्कार की जगह पर दृढ़ता सिखाई है। बहुत दृढ़ संकल्प कर ले, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं करना है। जब आप ऐसी प्रतिज्ञा कर लेंगे, उस संस्कार से आप मुक्त हो जाएंगे। उस योग को ज्वालामुखी योग कहते हैं, जिसमें इतनी एकाग्रता है संकल्पों की, जिसमें इतनी दृढ़ता है कि मरेंगे मिटेंगे लेकिन ये कर्म फिर से नहीं करेंगे, एक बार हो गया तो हो गया, इसको कहते हैं ज्वालामुखी याद, जिसमें एक बाबा दूसरा न कोई, एक की लगन में आत्मा मगन है, कोई संकल्प विकल्प इधर उधर की नहीं चल रहे हैं। ठीक है, योग की कई विधियां हैं, समय प्रति समय बाबा ने हमें सुनाई है कि वो योग कितना समय करेंगे। निरंतर योगी अगर बनना है, क्योंकि ज्वाला के लिए केवल 5 मिनट 2 मिनट योग नहीं चाहिए, निरंतर योगी ही उस स्टेज तक पहुंच सकता है। अगर कोई भी इधर उधर के संकल्प विकल्प हैं, उलझे हुए हैं और योग करने बैठेंगे तो वहीं संकल्प जाएंगे। इसलिए रूह रिहान करो, बाबा की ज्ञान का अच्छा अच्छा चिंतन करो, मुरली की बातें अंदर अंदर सुमिरन करो, मनन चिंतन करो, ये सब योग के सब्जेक्ट में गिनती हो जाएंगी। लेकिन विकर्म विनाश वाला योग तो वही योग है जिसमें पावरफुल एक बाबा दूसरा ना कोई। ये संस्कार चेंज करने की विधि ये भी है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा शालिग्राम या शिवलिंग जो बनते हैं, कैसे बनते मालूम है? इनको तोड़ते नहीं, इनको काट पीट करके नहीं बनाते हैं, ये घिस घिस करके बन जाते हैं। सागर के अंदर एक बार मैं मॉरिशियस में गया तो एक जगह पर ले गए तो वहां पर चट्टाने पहाड़ से टूट टूट करके सागर में आती हैं और वो सागर की तेज लहरों के साथ ऐसे बाहर आती हैं और फिर धीरे धीरे फिर नीचे चले जाते, फिर बाहर आते पत्थर छोटे छोटे, और पानी के साथ पत्थर आपस में जो रगड़ते हैं और रगड़ते रगड़ते इतने सुंदर शालिग्राम बन जाते हैं, शिवलिंग बन जाते हैं। मुझे ले गए वहां, कहते आपको जितने शालिग्राम चाहिए यहां उठा लो, पहाड़ लगा हुआ था, सब गोल गोल बहुत मीठे सुंदर लग रहे थे, चिकने चिकने, लेकिन कैसे बने? संग में पानी के पत्थरों के संग में रहते रहते रगड़ते रगड़ते बन गए। लेकिन देवी देवताएं ऐसे नहीं बने, उनको तो हथौड़ी छेनी लगी है, उनकी मूर्तियां कैसे बनाई? मूर्तिकारों ने छेनी लगाई, उनको काटा पीटा, फिर मूर्ति का रूप दिया, पूजनीय बने। तो हम सब दोनों प्रकार से पूज्य बन रहे हैं, बाबा हमको डबल पूज्य बनाना है। एक तरफ हम संग में आते हैं, अच्छे वातावरण में आते हैं, जैसे रगड़ते एक दूसरे के साथ संस्कारों के साथ, और धीरे धीरे एकदम शुद्ध प्योर बन जाते हैं। टाइम लगता है, लेकिन शालिग्राम के रूप में पूजा होगी, देवी देवताओं के स्वरूप में पूजा हो, ऐसी पूज्य आत्मा बन जाए, उसके लिए फिर कुछ सहन करना है, कुछ सामना करना है, कुछ समाना है, सब शक्तियां आत्मा के अंदर चाहिए, तब वो पूज्यनीय बनेगी। तो हम सब आत्माएं इतनी पावरफुल तपस्या करें, एक बाबा एक की लगन में मगन हो जाएं। अभी बैठते हैं थोड़ी देर तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर बुद्धि इधर जाती है उधर जाती है, फिर उसको एकाग्र करते, लेकिन एकाग्रता में स्थिरता है और स्थिरता में स्वच्छता है। समझना थोड़ा बात जो मैं कह रहा हूं। एकाग्रता जब पहले जैसे कोई पानी बह रहा हो ना और उसको एकाग्र कर लो, इकट्ठा कर लो, तो धीरे धीरे वो बिल्कुल शांत होते 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 स्थिर हो जाता, उसकी जो मिट्टी कण धूल है वो बैठ जाती नीचे, स्थिर हो गया। स्थिर होने के बाद बड़ा स्वच्छ हो जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है। उसके बाद उस कांच जैसा हो जाता तो स्पष्ट हो जाता है कोई भी चीज। बहुत गहरा पानी 50-100 फुट 1000 फुट भी गहरा हो, कोई भी चीज उसके अंदर होगी तो बहुत बड़े रूप में दिखाई देगी। अगर इतनी अंदर स्वच्छता है तो आत्मा जो है जैसी है और बाबा हमारा जो है जैसा है उसको देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। वो इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, वो दिव्य नेत्र से अनुभव होगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मेरे से अगर मिलन मनाना है, मेरे से अगर रूह रिहान करनी है, रूह रिहान का रिस्पॉन्ड प्राप्त करना है, तो जिस रूप में मैं हूं इस रूप में आकर के बात करो, उसी ड्रेस में आके बात करो। मैं एक बहुत सुंदर चमकीली ड्रेस में बैठा हूं और तुम बच्चे मिट्टी की धाग वाली ड्रेस पहने हो, मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। इस पर विचार करना, ये देह अभिमान वाली है, दाग वाली ड्रेस है, कोई ना कोई दाग लगे हैं, और हम बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं, शक्ति लेना चाहते हैं, अपनी बातों का उत्तर चाहते हैं, रिस्पॉन्स चाहते हैं, क्या वो बाबा हमारे मुख की भाषा समझ सकेगा? मुख की भाषा में तो आप गुजराती बोलोगे, महाराष्ट्र वाले मराठी बोलेंगे, तेलुगु वाले तेलुगु बोलेंगे, कोई कोई भाषा बोलेगा, कोई कोई भाषा। बाबा ये भाषा जानता है क्या? बाबा कहते हैं इस भाषा को मैंने तो सीखा ही नहीं है। बाबा हमारे दिल की भावनाओं की भाषा को जानता है। किस दिल से किसनी भावना से बाबा कहता है, बाबा के पास वो पहुंच जाता है, उसका रिस्पॉन्ड मिलता है। तो ऐसे बाबा कहता है बच्चे जब मेरे से मिलन मनाना है, मेरे से शक्ति लेनी है, तो आप बच्चे उस लाइट की रेस में आओ मेरे पास। अब लाइट की ड्रेस हर एक के पास होनी चाहिए, है माता है आप लोगों के पास ड्रेस है? कितने ड्रेस लेके आए हो? लाइट की ड्रेस है भाई लोग? नहीं है कोई के पास? जिसके पास है वहां तो उठाओ देखूं, दो चार के पास है बस। आप लोगों के पास नहीं है? बिना लाइट की ड्रेस है तो बाबा मिलेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे? बनवाएंगे आप सबको, खुद बनानी पड़ेगी, कोई दूसरा बना के नहीं देगा। अपने सब संकल्पों को अर्पित करो बाबा के आगे। इसलिए हमारी भट्टी का एक नियम बना हुआ रहता है, कोई भी बोझ है, कोई भी बंधन है, कोई भी गलत कर्म हुए हैं, जो बीती बातें याद आती हैं, उनको लिखो कागज पर, लिख डालो। लिख करके बाबा के कमरे में बड़े सच्चे दिल से बाबा को, बाबा ये सब ले लो आप, मुझे नहीं चाहिए, अर्पित करो, हल्के हो जाओ। संकल्प को भी बाबा के आगे स्वाहा कर दो, क्यों बाबा मुझे इससे संकल्प विकल्प आते हैं, ये संस्कार है, ऐसी बातें हैं, ये सब मैं आज आपके आगे अर्पित करता हूं। बाबा कहता मैं सब बोझ उठाने के लिए आया हूं, मुझे दे दो, आप हल्के हो जाओ। फरिश्ता ड्रेस हल्की ड्रेस है, डबल लाइट है। डबल लाइट माना एक हल्की है, दूसरी प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, चमकीली है। तो जब अपने संकल्पों को बिल्कुल हर बोझ से हल्का करके, मैं एक बहुत शुद्ध आत्मा हूं, एक बहुत पवित्र आत्मा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूं, ऐसे संकल्प रचेंगे तो एक शुद्ध संकल्पों का एक बहुत लाइट का सुंदर आभा मंडल तैयार होगा, अपने संकल्पों से एक ड्रेस तैयार हो जाएगी। और वो लाइट की ड्रेस में जब आत्मा ऐसे अनुभव करेगी कि मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र लाइट के बीच में हूं, तो लाइट जैसे उड़ेगी, हल्की हल्की चीज ऊपर उड़ के जाती है, बाबा के पास पहुंचेगी और बाबा को उसी ड्रेस में देखेंगे, क्योंकि बाप दादा इस समय सदा उस ड्रेस में है। शिव बाबा भी बिना उस ड्रेस के बच्चों से नहीं बात करता, कैसे बात करेगा, उसको मुख ही नहीं है, निराकार स्वरूप में। ब्रह्मा बाबा के आकारी शरीर में प्रवेश करके लाइट के शरीर में बाप दादा मिल करके बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को शक्ति देते हैं, सकास देते हैं, प्यार और पालना देते हैं, गाइड करते हैं, वतन में बैठ करके स्थापना के कार्य को संपन्न करा रहे हैं। देश विदेश कहां भी जो बच्चे रह रहे हैं, बाबा को याद करते हैं और बाबा वहां पहुंच जाते, उनको अनुभव कराते हैं। हम सब बाबा की याद में बाबा के पास जाएं, बाबा से मिलन मनाएं, बाबा से शक्ति ले और अनुभव करें, जैसे बाबा लाइट की ड्रेस में है ऐसे मैं आत्मा उसी लाइट की ड्रेस में हूं। जो बोलेंगे अनुभव होने लगेगा, बाबा से जो कहेंगे उसका रिस्पॉन्ड प्राप्त होने लगेगा। लेकिन ये विधि यथार्थ होनी चाहिए। अभी अभी तो बहुत प्यार में है, अभी अभी दूसरी बातें खींच रही हैं, बाबा खिसक जाता है, अलग हो जाता है। तो मैं समझता हूँ बड़े सच्चे दिल से बहुत अच्छे ड्रेस में बैठ करके अपने लाइट माइट स्वरूप को इमर्ज करो। अभी हम 10 मिनट के लिए योग करते हैं, रिकॉर्ड भी बजेगा 12 बजे 10 मिनट के लिए सब लाइट की ड्रेस में बैठो। देखो फरिश्ता ड्रेस है, सचमुच है मेरे पास, मैं एक बहुत शुद्ध आत्मा हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ और मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर प्रकाश का आभा मंडल है। मैं उस प्रकाश के शरीर से अपने वतन में बाबा के बिल्कुल समीप, उनके समान उस स्वरूप में स्थित हूं। बाबा की मुस्कुराती हुई बहुत प्यार भरी दृष्टि का अनुभव करो, उनकी सकास का अनुभव करो, उनका वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करो। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए और ऐसे समय पर अगर 1-2 मिनट भी अच्छा अनुभव कर लिया तो विशेष जब नमाज शाम को योग करना 5:30 से 7:30 उसमें आप और गहरे अनुभव इसके कर सकते हो, बहुत अच्छा समय होता है। मैंने कई बार देखा है कि अमृत वेले से भी पावरफुल शाम का योग होता है। अमृत वेले बहुत चारों तरफ नींद का वातावरण होता है, उसके लिए बहुत अलर्ट होना पड़ता है। बाबा का वरदानी समय है, इतना सुंदर हम सबको बाबा ने गोल्डन चांस दिया है, मिलन मनाने का, वरदान लेने का, भोलानाथ बाबा को राजी करने का। लेकिन कई बाबा के बच्चों को अभी तक भी अमृत वेले अच्छे अनुभव नहीं होते, बैठ जाते हैं उठ करके, नियम पालन करते हैं, लेकिन जिस तरह से बाबा चाहता है बच्चे रूहान करें, शक्ति लें, वरदान लें, भरपूर हो जाएं सवेरे सवेरे, कम कर पाते हैं। लेकिन शाम के समय अगर बैठ जाते हैं फ्रेश होकर के, सब कार्य समेट करके, तो कई बार देखा है बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। यहाँ तो आप इसका पूरा लाभ लेना, घरों में कई काम होते हैं लेकिन यहाँ के वातावरण में नमाज शाम को ये अच्छे अनुभव फरिश्ता स्थिति के बीज रूप स्थिति के, जिसको ज्वालामुखी योग का पावरफुल स्थिति के अच्छे अनुभव। दो ही लक्ष्य है हमारे, एक आत्मा संपूर्ण पावन बन जाए, पूरी पढ़ाई का जो इसेंस है, चाहे वो हमारी खान पान की परहेज है, संग की परहेज है, वातावरण में नहीं जाना, ऐसे वायुमंडल में नहीं जाना, उन सब के पीछे उद्देश्य है पावन बनना, पवित्रता। जितनी आत्मा पवित्र स्वच्छ बनती जाएगी, उतना उसका योग बहुत पावरफुल हो जाएगा। जिस योग के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस योग का आधार पवित्रता ही है, और जितनी पवित्रता आत्मा स्वच्छ पवित्र निर्मल हो जाती है, सब विचारों से अलग हो जाती, उतना योग शक्तिशाली हो जाता, और जितना योग शक्तिशाली होता है, उतना उसकी सूक्ष्म कोई भी हिसाब किताब की, पुराने कई जन्मों के कड़े हिसाब किताब, वो सब परिवर्तन होते, समाप्त हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से उत्प्रोत है। इसलिए बी होली बी योगी, ये पहला पाठ पहले दिन बाबा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। आत्मा के ज्ञान के साथ साथ पहला स्लोगन मिला बी होली बी योगी, राजयोगी बनो, पवित्र और योगी बनो। हम सब बाबा के बच्चे यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जब तक हैं इस जीवन में, तब तक यही सीख करके उस स्टेज को पाना है। इसलिए थकना नहीं, योग नहीं लगता है, मेहनत लगती है, संकल्प इधर के उधर के आते हैं, कई बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। दो बीमारियां बहुत फास्ट गति से फैलती हैं, एक दिल से कस्ते की बीमारी, ब्राह्मण आत्माओं की बता रहा हूं, बाहर वाली की नहीं, वो भी उसी से कनेक्टेड है, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, पता नहीं मेरा क्या हिसाब किताब है, मेरे आगे इतने बंधन हैं, मैं क्या करूं, शरीर के द्वारा मैंने बहुत कुछ गलत किया है, शरीर कितना बीमार रहता है, संस्कार कितने पतित हैं, ये विकार वो विकार भरा पड़ा है, कोई कोई एकदम अपने आप को डल महसूस करते, निराश हो करके, कभी ये नहीं सो मान लेते हैं, अरे भगवान ने अगर मेरे पर नजर डाली है, जरूर उसने हमारी कोई विशेषता देखी है, कोई हमारी गुण देखे हैं, कोई क्वालिटी देखी है, तब तो उसकी नजर पड़ी है, कमी कमजोरी सबके अंदर है, समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो दिल से कस्ते की बीमारी है, ये हमारे उमंग उत्साह की नसों का जो खून है वो ब्लॉक कर देता है, समझ रहे हैं मेरी बात, जैसे दिल की बीमारी जो होती है ना, हार्ट की बीमारी, उसके अंदर खून जमने लगता है नसों के अंदर, क्लोस्टल जिसको कहते हैं, ब्लॉकेज हो गई। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं के अंदर कई प्रकार की ब्लॉकेज हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, खुशी नहीं रहती, नशा नहीं रहता, उमंग उत्साह नहीं है, सेवा करना अच्छा नहीं लगता है, संग में जाना अच्छा नहीं लगता है, जैसे एकदम डलेड हो गया। और दूसरी बीमारी बहुत जबरदस्त फैल रही है, बहम की, अहम और बहम, या तो कहेगा मैं सब कुछ मैं ही हूं, मेरे सिवाय तो जैसे यज्ञ नहीं चल सकता है, बाबा का कार्य रुक जाएगा, थोड़ा सा कुछ करता है, बाबा एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझने लगा मैं तो बहुत बड़ा पंसारी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, थोड़ी सी सेवा किया, थोड़ी कोई विशेषता आ गई, कोई ने महिमा कर दी, अहंकार आ जाता, मैं आ जाता। या फिर कहेगा ये जो व्यक्ति है ठीक नहीं है, या मैं देवता बनने वाला तो हूं ही नहीं, मेरे अंदर वो संस्कार नहीं है, बहम, अपने में बहम, परिवार में बहम, जिसको देखेगा उसी नजर से देखेगा, ये कहते तो हम पवित्र रहते हैं, कहां रहते होंगे, जैसा खुद वैसा ही सबको देखने लगता है, बहम। ये कैंसर की बीमारी है, गांठे बना देती है अंदर अंदर, पता नहीं चलता है, लेकिन जब मरने पर आता है ना तो पता चलता है, लास्ट स्टेज पर चला गया, अभी कोमा में चला जाएगा वो। चेक करना कहीं भी किसी भी प्रकार का अहम और बहम तो नहीं है, निराश उदास तो नहीं होते। अगर इन बीमारियों से ब्राह्मण बचा हुआ है, बहुत तीव्र गति का पुरुषार्थ कर सकता है, फास्ट जा सकता है। किसी को क्यों देखना है, जो करेगा वो पाएगा। बाबा मुझे जो चांस दे, मैं तो हमेशा एक ध्यान रखता हूं, जो चांस बाबा के घर में मिले ना नहीं करना, तन से मन से धन से समय से, जो सेवा का चांस मिले ले लो। जैसे अभी ले लिया ना चांस, जो डरने वाले हो तो बैठे घरों में, पता नहीं क्या हो जाएगा, जाएंगे संगठन में ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने चांस लिया वो कितना फायदा ले रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं, डरने वाले बैठे हैं। चांस मिलता है तो बाबा कहता चांस लेने वाले चांसलर हैं, तो चांस लिया, चांस लेते चलो। कभी भी कोई ऐसी बातें आती हैं, डोंट केयर, आगे बढ़ जाओ, बातें सबके आगे आती हैं, बैरियर तो आते ही हैं, रास्ते में मार्ग में जा रहे हैं, हम चढ़ाई पर जा रहे हैं, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं चढ़ाई पर चढ़ने के लिए। गाड़ी साधन अगर आप लेके आ रहे हैं तो पहले तो ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए, लेकिन ब्रेक सब जगह नहीं लगाई जाती है, ऐसे नहीं जहां चाहिए वहां ब्रेक लगाते जाओ, कैसे जाओगे मंजिल पर। ब्रेक वहां लगाई जाती है जहां बैरियर आते हैं या जहां कोई एक्सीडेंट की संभावना होती है, वहां पर गाड़ी को स्लो कर लेते, ब्रेक लगा देते, और ब्रेक लगा के वो सीन पास हो गई, फिर अपनी मंजिल की वो फिर से गाड़ी को बढ़ा देते, तब पहुंचते हैं मंजिल पर। चेक करना क्या मैं योग की ऊंची स्टेज को प्राप्त करने के लिए ब्रेक इतनी सुंदर रखी है, पावरफुल। कोई भी बातें देखो सुनो मेरे काम की नहीं है, रुकावटें हैं, ब्रेक लगाओ। ब्रेक कैसे लगते हैं, कौन सी ब्रेक है आपके पास, भाइयों के पास कौन सी ब्रेक है? नथिंग न्यू, ड्रामा कल्याणकारी है, कोई नई सीन तो है ही नहीं। क्यों मैं अपने आप को उलझा रहा हूं, क्यों फंसा हुआ हूं, जो था होने वाला वही हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी हो रही है। संकल्प विकल्पों पर जो इधर उधर फास्ट जा रहे थे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये क्यों करा वो क्यों करा, पृष्ठा नथिंग। बाबा ने मम्मा ने दादियों ने इसी ब्रेक से अपनी स्थिति को ऊंचा बना लिया। आपके पास नहीं है ब्रेक, चिंतन किया है, ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा का बहुत अच्छे से अच्छा पार्ट है, जो संबंध मिले हैं इनके साथ कोई बहुत बड़े हिसाब किताब थे इसलिए मिले हैं, पूरा करेंगे पार हो जाएंगे, नथिंग न्यू। क्यों मिले, कैसे मिले, यही संबंध मिलने थे क्या, ये तो ऐसे मिल गए। इनमें बहुत कई बाबा के बच्चे ब्रेक नहीं लगा पाते, संकल्पों को शांत नहीं कर पाते। योग की पावरफुल स्टेज का अनुभव करने के लिए पहली शक्ति है ब्रेक, स्टॉप। सब अच्छा है, कल्याणकारी ड्रामा है, इस सीन के अंदर बहुत कुछ रहस्य भरे हुए हैं, कल्याण ही कल्याण है, अभी नहीं पता चला है, आगे चल के खुल जाएगा। अगर बुराई भी है तो भी बाबा कहता उस बुराई में भी अच्छा ही समझो, क्योंकि कम से कम उस बुराई ने आपको सिखा दिया, आपको अनुभवी बना दिया, आपको आगे बढ़ा दिया, इसलिए पेपर आया है क्लास बढ़ाने के लिए। तो अगर योग को बहुत शक्तिशाली बनाना है तो एक तो संकल्पों को स्टॉप करने की ब्रेक चाहिए, और दूसरी मोड़ने की शक्ति चाहिए, मोड़ लो। मान लो बहुत सारे इधर उधर के संकल्प आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे, ब्रेक नहीं लग रही है, ब्रेक ढीली है। मोड़ तो सकते हो, हैंडल है ऐसा, इधर के संकल्पों को कोई अच्छा पढ़ने लगो, अच्छा चिंतन करने लगो, अच्छे संग में चले जाओ, अच्छे वातावरण में चले जाओ, जो नेगेटिव संकल्प विकल्पों के तूफान आ रहे थे वो मुड़ जाएगी, गाड़ी इधर से इधर चली जाएगी, मान लो बिस्तर पर लेटे हो, बहुत संकल्प विकल्प इधर उधर के आ रहे, उठ जाओ उधर से बिस्तर से, छोड़ दो, अलग स्थान पर बैठ जाओ, थोड़ी देर अच्छे गीत सुनो, कोई अच्छी क्लास सुन लो, जो चीज अच्छी लगती हो बजा करके, आजकल सब साधन है, कम से कम उन संकल्प विकल्पों से छूट जाओगे, चेंज हो जाए, मोड़ लिया अपने संकल्पों। युद्ध कर रहे हैं रात भरे, वैसे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, शक्ति जा रही है, फिर योग कैसे लगेगा? योग को शक्तिशाली बनाने के लिए हर ब्राह्मण आत्मा के पास एक पावरफुल ब्रेक चाहिए और एक बहुत अच्छा सॉफ्ट हैंडल चाहिए, जिससे अपने आप को मोड़ करे, मोड़ ले ऐसे। जो बात अच्छी नहीं लगती है, जहां पर अच्छा नहीं लगता है, क्यों क्या कैसे क्यों कर रहे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये मोड़ लो अपने आप को, दूसरा रास्ता ले लो, सेफ्टी है इसमें। संगम युग की चार शक्तियां हम सबको बचानी है। सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति, समझते हो? एक एक संकल्प बहुत वैल्यूबल है, जो बनना चाहो बन सकते हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो। इतना एक एक ब्राह्मण बच्चे को बाबा ने संकल्प शक्ति का महत्व बता करके कि बच्चे ये एक ऐसी शक्ति है, मन एक ऐसी आत्मा की शक्ति है जो आपको तीनों लोकों का सैर करा सकती है, जहां चाहिए वहां पहुंच सकते हो और जितना समय चाहे उस स्थिति का अनुभव कर सकते हो, लेकिन संकल्प शक्ति कंट्रोल में चाहिए। इसलिए बाबा की मुरलियां चल रही है, मन जीते जगत जीत, मन को जीतो। जीतना माना ऐसे नहीं युद्ध करके जीतना है, प्यार से भी जीता जाता, कहता इसने तो मेरे दिल को जीता हुआ है। दिल को जीता कैसे जाता है? प्यार से, पालना से, कैसे, तो बहुत मेरे दिल को जीत लिया। ऐसे हम सब मन को इतना अच्छा भोजन दें, इतना स्नेह दें, इतना सम्मान दें, जो मन मेरा कहना माने लगे, बस भटकना बंद कर दे। इधर उधर का भोजन नहीं देना, जो अश्लील भोजन है, कोई न्यूज देख रहे हैं, कोई इंटरनेट पर गंदे चित्र देख रहे हैं, कोई टीवी में सीरियल देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और फिर कहते मेरा योग नहीं लगता। भोजन क्या दे रहे हो संकल्प को? अगर गलत भोजन है, गंदा भोजन है, तो मन तो उछलेगा ही, वो तो चंचल है ही। उसको शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन, अच्छा संग दो, अच्छे चिंतन का, विचार का भोजन दे दो, मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति है, और इसको हम ऐसे ही गंवा रहे हैं, जो देख लिया ये कर रहा वो कर रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, अरे कोरोना ऐसे हो गया, फलानी जगह से आ गया, उसने कर दिया, सरकार ऐसे कर रही वैसे कर रही, क्या तेरा लेना देना है? क्यों इनमें अपना समय शक्ति व्यर्थ कर रहे हो? इससे अपने को बचाओ। ये संकल्प संगम का बहुत कीमती है, एक एक संकल्प सारे कल्प की कमाई का साधन है। इसलिए सब बाबा के बच्चों को संकल्प संगम का अमूल्य समय, ऐसे नहीं बैठ के बातें कर रहे हैं इधर की उधर की, तेरे की मेरे की, क्या जरूरत है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? संगम पर जितना समय मिलते मनन करो, चिंतन करो, अच्छी कोई समय मिल गया लिखो पढ़ो, जो कला है उस कला का प्रयोग कर लो। कईयों ने इस लॉकडाउन के अंदर समय मिल गया, इतने अच्छे अच्छे लेख लिखे, इतना अच्छा चिंतन किया, अच्छा योग किया, मनसा सेवा की, परिवार के बीच में रह करके अच्छे अच्छे अपने गुणों से, अपने प्रभाव से, ज्ञान की धारणा के आधार से एक परिवार को ज्ञान में ले आए। कई परिवार में रहने लगे तो टकराव शुरू हो गए, साथ में रहने लगे झगड़े शुरू हो गए, और कईयों के घर मंदिर बन गए। समय को सफल किया उन्होंने, श्वास को सफल किया, और संपत्ति जो बाबा की है, चाहे वो गुणों की संपत्ति है, चाहे वो स्थूल संपत्ति है, संपत्ति व्यक्ति को बहुत महान बना सकती है। संपत्ति के बिना जीवन नहीं है। बेचारे देखो आज संपत्ति के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे। बाबा ने हम सबको अविनाशी संपत्ति दी है, और जो स्थूल में भी संपत्ति है उसको सफल करना सिखाया है। कहां पर सफल करना है, किधर सफल करना है, ऐसे नहीं जहां आया वहां खर्च कर रहे हैं, हमारे पास एक भाई है, कुछ दिन पहले मेरे को मिले, हमने कहा बहुत पैसे करोड़ों रुपए हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ये वो थी, ज्ञान में आ गए, फिर भी उनके संस्कारों में इस हॉस्पिटल को इतना देना है, इधर देना है, इधर देना है, इधर देना है, बाबा के घर में कुछ सफल नहीं कर रहे, चारों तरफ से चैरिटी। मैंने एक दिन ऐसे पूछा, हमने कहा आपका पुण्य बन रहा है? कहते बहुत दान कर रहा हूं मैं, बहुत दुआएं मिल रही हैं। दुआएं तो मिल रही हैं लेकिन पुण्य जमा हो रहा है। कहता आप क्या कहना चाहते हो? हमने कहा आप जिसको कर रहे हो वो आपके पैसे का सही प्रयोग कर रहा है, ऐसा तो नहीं उस पैसे से कोई गलत काम हो रहा हो। कहता उस पर तो मुझे ध्यान नहीं है। सोचना, पैसा भी कहां दान कर रहे हैं, उस दान से क्या कार्य हो रहे हैं। अगर कार्य गलत हो रहे हैं, वहां पर कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई हेरा फेरी आपके पैसे से हो रही है, उसका बोझ आप पर भी पड़ सकता है। समझ चाहिए, है पैसा सफल करो, लेकिन कहां से हमारा भाग्य बन सकता है। संगम पर बाबा हमको सिखा रहा है, बच्चे नई दुनिया की स्थापना के लिए अगर आपका कुछ थोड़ा सा भी सहयोग लगेगा तो भगवान आपको रिटर्न देने के लिए बन जाएगा। उसके कार्य में आपने कितना सफल किया, सोचने लगा। हमने कहा थोड़ा सोचो, विचार करो, मैं ये नहीं कहता हूं तुम वहां नहीं करो, कर रहे हो करो, वो भी अच्छा कार्य है, समाज का कार्य है, समाज सेवा है, नाम होता है, माला पहनाई जाती है आपको, आपकी प्रशंसा होती है, स्टेज पर बुलाया जाता है, बस उतने में खुश है व्यक्ति, मेरी महिमा हो गई, मेरा नाम हो गया, मेरा अखबारों में आ गया, बाबा के घर में तो मिलता नहीं है, तो गुप्त दान महापुण्य है। ये समझ चाहिए, जो संपत्ति बाबा की है, ऐसे नहीं है ज्ञान की संपत्ति है जहां या वहां बांट रहे हैं, अरे पात्र को देख करके दान करना होता है। समझदार है, कुछ ग्रहण कर सकता है, तो ज्ञान की गुणों की स्थूल में कोई भी प्रकार की जो संपत्ति है उसको सफल करो। तो अगर चार खजाने संगम पर सफल हो रहे हैं, संकल्पों पर हमारा कंट्रोल है, हमारे हाथ में बहुत पावरफुल ब्रेक है, खूब अच्छा ज्ञान का मनन करो, चिंतन करो, बुद्धि के अंदर भरपूर है, वैसे भी देखो अगर ब्रेक में आयल नहीं हो तो ब्रेक लगती है, कहते सूख गई ब्रेक, आयल चेक करते हैं ब्रेक के अंदर। ये मन की ब्रेक तभी पावरफुल बनेगी जब उसमें ज्ञान का आयल होगा। जिसने मनन किया है, चिंतन किया है, आत्मा कितनी सूक्ष्म है, छोटी से छोटी है, ब्रह्मा बाबा कितना मनन करता होगा, अरे बच्ची इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, और उसके अंदर 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, और हूबहू अपने समय पर रिपीट होता है। जैसे रिकॉर्ड पहले जमाने में बनते थे, शायद आप लोगों ने देखा होगा, बाबा की मुरलियां भी रिकॉर्डेड थी, और रिकॉर्ड जब चलाए जाते थे तो सुई जहां पर रखी जाती थी वहीं से रिकॉर्ड बजना शुरू हो जाता, शुरू से रख दिया तो शुरू से बजेगा और बीच में रख दिया तो बीच से बजना शुरू हो जाएगा। और कहां भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है, एक छोटी सी सुई और एक धारी पर चल रही है और रिकॉर्डिंग कितना अच्छा बज रहा है। आत्मा भी इतना सूक्ष्म रिकॉर्ड है, इसके अंदर कितना बड़ा 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, विचार करके देखो कैसे खेल खेल रही है, कैसे पार्ट बजा रही है, और बिल्कुल एक्यूरेट बजा रही है, और एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से नहीं मिल सकता। ये ज्ञान हमको कितनी समझ देता है। अगर हम अपने बच्चों को अपने परिवार में बोलूं कि जैसा मैं कर रहा हूं तुमको ऐसा करना चाहिए, और वो नहीं कर रहा है तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमने इसको जन्म दिया, हमने पढ़ाया, हमने पालना की, हमने इसको बड़ा किया, ये मेरा कहना नहीं मानता, मेरे संस्कार इसके संस्कारों से नहीं मिलते, और बाबा ने तो पहले समझा दिया है बच्चे एक का संस्कार एक के कर्म दूसरे से नहीं मिलेंगे। अगर किसी ने ज्ञान को अच्छी तरह से चिंतन किया है तो डिस्टर्ब होगा क्या? इसका पार्ट अपना है, मेरा पार्ट अपना है, मेरा पार्ट है इसको समझ देना और इसका पार्ट है मानना या न मानना। ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान स्वरूप आत्मा सहज योगी जीवन का अनुभव करती है, और सहज योगी जीवन बन जाएगी तो बाबा के साथ अपने आप मिलन होगा, योग सहज हो जाएगा। योग में मेहनत इसलिए लग रही है क्योंकि हमने ज्ञान को घोटा नहीं है, ज्ञान का चिंतन नहीं किया। तो आप सभी बहुत अच्छे बाबा के बच्चे, मुरली को सिर्फ सुनो नहीं, सुमिरन नहीं करो, लेकिन उस पर चिंतन करते करते उसका स्वरूप बन जाए, और जब स्वरूप बन जाएंगे तो योग तो सहज है, स्वतः है, निरंतर है, लगाने वाले हम नहीं है, हमारी योगी जीवन है। खाना पीना, चलना, बात करना, देखना, लोगों को लगे ये तो योगी है, योगी माना न्यारा है, प्यारा है, अलग है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है, उसको योगी कहते हैं। तो हम सब योगी जीवन वाले हैं। योग हमारी हर कर्मेंद्रिय से दिखाई दे, शीतलता है, पवित्रता है, धैर्यता है, बहुत सरलता है, बहुत सहनशीलता है, ऐसे दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे तो हम सब योगी जीवन वाले बने। ठीक है, बाकी आपका कोई प्रश्न है, कोई पूछना है? ठीक है, सब संतुष्ट है यहाँ भट्टी से? पहला दिन है आज इनका? चलो अच्छा, ठीक है, 3 मिनट योग करके पूरा करें। कुछ कहना आपको?
ओम शांति। कैसा लगा सभी को? सभी बहुत मगन हो गए, वैसा एकदम संतुष्ट, तृप्त, सारे प्रश्न है ना समाधान हो गया। क्या करना है भाई साहब ने प्रैक्टिकल बताया, है ना, जैसे दादी ने हीरे को, आज भी था ना बेदाग हीरा, तो कैसे हीरे को और बुद्धि से अपनी देखना है कहाँ को। भाई साहब ने आज ये भट्टी का बहुत सुंदर जैसे होमवर्क दिया है ना, सभी को बहुत अच्छी अच्छी बातें मिली और अपने पुरुषार्थ में इसको लाने के लिए, तो इसलिए सभी लोग संतुष्ट हो गए हैं। भाई साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक्स भाई साहब का, है ना। भाई साहब ने ये सिखाया ना कि संगम युग पर कभी भी किसी भी सेवा के लिए, तन से, मन से, धन से, कोई भी सेवा है तो हाँ, है ना। भाई साहब 10 लोगों की क्लास के लिए शांतिवन से 30 बार की यहाँ से भट्टी होती थी, तो मैं भाई साहब का दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि हम 10 लोग यहाँ से, 10 लोगों का एकोमोडेशन था, तो 10 लोग भट्टी करते थे, तो भाई साहब से रिक्वेस्ट की तो शांतिवन से 30 पार का है भट्टी कराने के लिए 10 लोगों को भी, तो थैंक्स है भाई साहब का बहुत दिल से। ओम शांति।